लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मानव व्यक्ति की गरिमा पर हमला करने वाले मृत्यु दंड का प्रत्येक देश में कानूनी रूप से उन्मूलन किया जा सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है बुधवार ये आमदर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में जमा हुए सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
करी फ्रातेल्ली ए सोरेल्ले, बोनजोर्नो। Riprendiamo le catechesi sul tema del discernimento.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। हम आत्म परीक्षण पर अपनी धर्म शिक्षा माला को पुनः जारी करते हैं, क्योंकि यह अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि हमें क्या हो रहा है, हमारे अंदर कौन कौन सी भावनाएं विचारें हिलोरे ले रही हैं, वे कहां से आती और हमें कहां ले जाती हैं, वे हमें कौन सा निर्णय लेने को प्रेरित करती हैं। अतः आज हम इसके मुख्य कारक प्रार्थना पर जिक्र करेंगे। आत्म परीक्षण करने हेतु हमें प्रार्थना के वातावरण में रहने की जरूरत है। प्रार्थना आध्यात्मिक रूप में आत्म परीक्षण करने के लिए एक अपरिहार्य कारक है, विशेषकर जब यह स्नेह में हमें ईश्वर की ओर उन्मुख करता, जहां हम अपनी सरलता और घनिष्ठता में एक मित्र की भांति उनसे बातें करते हैं। यह अपने विचारों से परे जाना है, जहां हम अपनी प्रेममयी सरलता में ईश्वर के संग एक गहरे संबंध में प्रवेश करते हैं। संतों के जीवन का रहस्य ईश्वर के संग उनकी घनिष्ठता और विश्वास को व्यक्त करता है, जो उन्हें दिन ब दिन उनकी योजना को जानने और पहचानने में मदद करता है, जो ईश्वर को अच्छे लगते हैं। सच्ची प्रार्थना ईश्वर के संग हमारी घनिष्ठता और उन पर हमारा विश्वास है, जहां हम अपनी प्रार्थनाओं को तोते की तरह नहीं बोलते हैं। सच्ची प्रार्थना स्वतः ही प्रेम से उत्पन्न होती है। यह घनिष्ठता हमसे इस भय को दूर करती है कि उनकी योजना, जिसके फलस्वरूप हम कई बार परीक्षा के दौर से होकर गुजरते, जो हमारे हृदय को विचलित और कटुता से भरती, हमारे लिए अच्छे नहीं है। संत पापा ने कहा, आत्म परीक्षण पूर्ण निश्चितता नहीं है, क्योंकि इसका संबंध जीवन से है और जीवन सदैव तर्क संगत नहीं होता है। जीवन के कई रूप हैं, जिन्हें हम सिर्फ एक विचार की तरह पिरोकर नहीं रख सकते हैं। हमारी चाह होती है कि हम यह जाने कि हमें क्या करने की आवश्यकता है, लेकिन जब उन्हें करने की बात होती तो हम उन्हें जानते हुए भी सदैव अपने कार्यों में नहीं करते हैं। हमने कितनी बार जीवन में संत पौलुस के विचारों को अनुभव किया है, मैं अच्छाई को नहीं करता जिन्हें मैं करना चाहता हूँ, बल्कि बुराई करता जिन्हें मैं नहीं करना चाहता हूँ। हम केवल तर्क नहीं हैं, हम यंत्र नहीं हैं, हमें कार्य हेतु सिर्फ निर्देशों की जरूरत नहीं है। संत मार्कुस के सुसमाचार में यीशु एक अबदूत ग्रस्त व्यक्ति को चंगाई प्रदान करते हैं। कफरनाहुम के मंदिर में अबदूत ग्रसित व्यक्ति की मुक्ति ईश्वर के एक झूठे प्रतिरूप को तोड़ना है, जिसे शैतान शुरू से हमारे लिए व्यक्त करता है। ईश्वर हमारी खुशी नहीं चाहते हैं। अबदूत ग्रस्त यह जानता है कि यीशु ख्रीस्त ईश्वर हैं, लेकिन वह उन पर विश्वास नहीं करता है। इसके विपरीत वह कहता है, आप मेरा सर्वनाश करने आए हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि हम में से बहुत से ख्रिस्तीय ऐसा ही सोचते हैं कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, लेकिन हम यह संदेह करते हैं कि वे हमारी खुशी नहीं चाहते हैं। वास्तव में हम में से कुछ यह सोचते हैं कि उनकी बातों को गंभीरता से लेना अपने जीवन का विनाश करना है, अपनी चाहतों और तमन्नाओं से अपने को दूर करना है। ऐसे विचार कभी कभी हमारे जीवन में उठते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन से बहुत अधिक मांग करते और हम अधिक मांग करने वाले ईश्वर से भयभीत हो जाते हैं। इस भांति ईश्वर सचमुच में हमें प्रेम नहीं करते हैं। इसके विपरीत हमारे प्रथम मिलन में हमने ईश्वर से मिलन को खुशी के रूप में व्यक्त किया। संत पापा ने कहा, जब प्रार्थना में मेरी मुलाकात ईश्वर से होती है तो मैं खुशी का अनुभव करता हूँ। हम सबों को खुशी होती है, यह अति सुंदर बात है। वहीं दुख या भय दूसरी ओर हमें ईश्वर से दूर करते हैं। यदि तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हो तो नियमों का पालन करो, यीशु ने उस धनी व्यक्ति से कहा। दुर्भाग्यवश उस जवान युवक के लिए कुछ चीजें रोड़ा बनी जिसके कारण वह अपने हृदय की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है। वह भले गुरु का अनुसरण निकटता से नहीं कर पाता, वह अपने में नेक चाह रखने वाला गुणवान युवक था। उसने यीशु से मिलने की पहल की थी, लेकिन वह अपने प्रेम की द्विधा भरी स्थिति में था। उसके लिए धन अधिक महत्वपूर्ण था। निर्णय लेने हेतु यीशु उस पर दबाव नहीं डालते हैं, लेकिन सुसमाचार के पद में हम पाते हैं कि वह व्यक्ति उदास होकर चला गया। संत पापा ने कहा, वे जो ईश्वर से विमुख होते वे अपने जीवन में कभी खुश नहीं होते हैं, चाहे उनके पास कितने भी धन संपत्ति और संभावनाएं क्यों ना हो। यीशु अपना अनुसरण करने हेतु हम पर कभी दबाव नहीं डालते हैं। वे हमें अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं, लेकिन वे हमें पूरी स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा,
discernere cosa succede dentro di noi non è facile.
आत्म परख अपने में सहज नहीं है, क्योंकि जो दिखता है वह भ्रमक है, लेकिन वहीं ईश्वर के संग हमारी घनिष्ठता धीरे से हमारी दुविधाओं और भयों को हमसे दूर करती और हम अपने जीवन में ईश्वरीय ज्योति का संचार होता पाते हैं। जैसे कि संत योहन हेनरी न्यूमैन अपने सुंदर अभिव्यक्ति में हमें कहते हैं, संतगण दिव्य ज्योति से चमकती और अपने साधारण जीवन के द्वारा ईश्वर की उपस्थिति को प्रकट करते हैं, जिसके फलस्वरूप असंभव चीजें संभव होती हैं। ऐसा कहा गया है कि एक दंपत्ति जो लंबे समय तक एक साथ रहते हैं एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हैं। एक प्रभावकारी प्रार्थना के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है। यह धीरे धीरे लेकिन प्रभावकारी ढंग से हमें चीजों को समझने में मदद करती है। हम यह एहसास करते हैं कि हृदय की गहराई से कुछ फूट कर निकल रही हो।
Chiediamo questa grazia di vivere una relazione di amicizia con il Signore.
हम इस कृपा की याचना करें कि हम ईश्वर के संग एक मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित कर सकें, जैसे कि हम अपने दोस्तों के संग वार्ता करते हैं। हम एक दूसरे के लिए भी इस कृपा की याचना करें कि हम यीशु ख्रिस्त को अपने मित्र की भांति देख सकें, जो सदैव हमारे संग निष्ठावान बने रहते हैं। वे हमारे संग ब्लैकमेल नहीं करते हैं, उससे भी बढ़कर वे हमारा परित्याग कभी नहीं करते हैं, यद्यपि हम उनसे दूर चले जाते हों। संत पापा ने कहा, वे हमारे हृदय द्वार के पास रहते हैं, वे चुपचाप खड़े रहते हैं, क्योंकि वे सदैव हमारे प्रति निष्ठावान हैं। हम उन्हें अपने हृदय में प्रेम से घनिष्ठता से पुकारें, अपने थोड़े शब्दों में लेकिन चिन्हों और अपने अच्छे कार्यों में। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सबों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
ex hoc nunc usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। बुधवारी आम दर्शन समारोह के दौरान फरवरी में रूस द्वारा अपने पड़ोसी पर आक्रमण के कारण चल रहे युद्ध के बीच संत पापा फ्रांसिस ने अपने विचारों को शहीद यूक्रेन की ओर मोड़ा। संत पापा ने यूक्रेन के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि यह देश बहुत पीड़ित है और इसके गरीब लोगों को इतनी क्रूरता से मारा गया है। संत पापा फ्रांसिस ने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित विश्वासियों को यह भी सूचित किया कि उन्होंने परम धर्म पीठ या दान विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल कॉनराड क्रायेस्की से बातें की, जो हाल ही में यूक्रेन की अपनी चौथी यात्रा से लौटे हैं, और संत पापा को वहाँ की भयानक स्थिति से अवगत कराया। संत पापा ने कहा, आइए हम यूक्रेन के बारे में सोचें और इन शहीदों के लिए प्रार्थना करें। महादूत मिखाएल, गैब्रियल और रफाइल के पर्व दिवस से पहले, जो 29 सितंबर को मनाया जाता है, संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन जेंदार मेरी कोर के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया, जिनके संरक्षक संत महादूत मिखाएल हैं। संत पापा ने प्रार्थना की कि जेंदार मेरी कोर हमेशा महादूत के उदाहरण का अनुसरण करे और प्रभु उन्हें उन सभी अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद दे जो वे करते हैं। उन्होंने आगे प्रार्थना की कि महादूत मिखाएल, गैब्रियल और रफाइल का पर्व, जिसे हम गुरुवार को मनाएंगे, ईश्वरीय योजनाओं का ईमानदारी से पालन करने में हमें सक्षम बनाए। उधर वाटिकन में कनाडाई दूतावास ने अंतर्राष्ट्रीय कैथोलिक प्रवासन आयोग के साथ ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और इटली के दूतावासों से मिलकर शरणार्थियों के स्वागत पर एक कार्यशाला की मेजबानी की। दो दिवसीय कार्यक्रम सोमवार को शुरू हुआ और कनाडा सरकार द्वारा संघर्ष और अन्य चुनौतियों से भागे हुए लोगों की मेजबानी करने में स्थानीय समुदायों की सहायता के लिए बनाए गए एक कार्यक्रम के परिणामों की खोज की। 1979 में अपनी स्थापना के बाद से कनाडा के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय समुदायों में उनके एकीकरण में सामुदायिक प्रयोजन कार्यक्रम के माध्यम से 3 लाख से अधिक शरणार्थियों की मदद की गई है। कनाडा के आप्रवासन, शरणार्थी और नागरिकता मंत्रालय की सुश्री एंजल टीसोट के अनुसार, इस आयोजन से अन्य देशों में इस तरह की पहल को बढ़ावा देने की उम्मीद है, जबकि मेजबान समुदायों को मजबूत किया जा सकता है ताकि शरणार्थियों के रहने के लिए अधिक स्वागत योग्य स्थान बन सके। कार्यक्रम से पहले एक प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि स्थानीय समुदायों में शरणार्थियों को एकीकृत करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता वियतनामी लोगों की सामूहिक पलायन के बाद आई। एक प्रवासन घटना जो 1970 के दशक के अंत में वियतनाम युद्ध के बाद अपने चरम पर पहुंच गई। हाल ही में अफगानिस्तान और यूक्रेन में युद्धों ने शरणार्थी समाधान के मुद्दे को राजनीतिक कार्य सूची में डाल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय कैथोलिक प्रवासन आयोग के महासचिव मोनसिनियोर बॉब विटिलो ने कनाडाई कार्यक्रम को यूरोपीय संघ के राज्यों के लिए एक संभावित मॉडल के रूप में रखा, क्योंकि वे शरणार्थियों को एकीकृत करने के लिए दीर्घकालिक समाधान चाहते हैं। अमेरिकी मूल के पुरोहित ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम पश्चिमी देशों से परे दुनिया के अन्य हिस्सों में भी लागू किए जा सकते हैं। संत पापा फ्रांसिस का संदर्भ देते हुए मोनसिनियोर विटिलो ने कहा कि शरणार्थियों का एकीकरण एक दोतरफा रास्ता है, क्योंकि स्वागत करने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों एक दूसरे को सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि प्रदान करती हैं। जैसा कि नाइजीरिया में अशांति और उग्रवाद जारी है, अंतर्राष्ट्रीय कैथोलिक प्रवासन आयोग संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद से सभी नाइजीरियाई लोगों के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में काम करने की अपील की। नाइजीरिया में मानवाधिकार की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता है। 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की 51वीं बैठक को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कैथोलिक प्रवासन आयोग ICMC ने जोर देकर कहा कि नाइजीरियाई लोग दुखद रूप से अपने जीवन और संपत्ति को खो रहे हैं और हिंसा से बचने के लिए देश के कई क्षेत्रों में विस्थापित हो रहे हैं। वैश्विक समुदाय अब उदासीन दर्शकों के रूप में खड़ा नहीं हो सकता। आयोग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संकट के आयामों को हमारे सदस्य संगठनों और भागीदारों द्वारा स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय विपक्षीय एजेंसियों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय के कार्यालय द्वारा सूचित किया गया है। ICMC के बयान पर अन्य विश्वास आधारित और अन्य नागरिक समाज संगठन अंतर्राष्ट्रीय कारितास, कारितास नाइजीरिया, संत पापा जॉन 23वें के समुदाय, विदेश, न्यू ह्यूमैनिटी और वर्ल्ड एवांजेलिकन अलायंस द्वारा हस्ताक्षर किए गए। संगठनों ने नाइजीरिया के कैथोलिक धर्माध्यक्षों की हाल की अपील, हमारे देश में असुरक्षा की बिगड़ती स्थिति के साथ साथ आतंकवादियों और विद्रोहियों, अपहरणकर्ताओं और डाकुओं की गतिविधियों को प्रतिध्वनित किया, गिरजाघरों और अन्य पूजा स्थलों में यात्रियों और उपासकों पर बहुत बार हमले हुए हैं। हम नागरिक अधिकारियों से नाइजीरियाई लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी के लिए खड़े होने का आह्वान करना जारी रखते हैं। उधर हैती में कानून और अव्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर प्रधानमंत्री एरियल हेनरी के इस्तीफे की मांग बढ़ रही है। हैती की आपदा की वास्तविक गहराई को हैती में संयुक्त राष्ट्र के दूत हेलेन लालाइम द्वारा स्पष्ट रूप से ध्यान में लाया गया है। 11 सितंबर को हैतियन सरकार द्वारा ईंधन सब्सिडी समाप्त करने के बाद हालात बद से बदतर होते गए। गैसोलीन और डीजल की कीमतों में उछाल आया और शेष अर्थव्यवस्था को ढहने के कगार पर खड़ा कर दिया। संगठित अपराध से त्रस्त कस्बों और शहरों में भोजन की कमी, दुकानें और व्यवसाय बंद हो गए और सार्वजनिक परिवहन अब मौजूद नहीं है। हैती में संयुक्त राष्ट्र के दूत हेलेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि आपस में लड़ने वाले गिरोहों ने भुखमरी का सामना कर रहे हैती के सबसे कमजोर आबादी के लगभग एक चौथाई के लिए रखे गए भोजन गोदामों पर हमला किया और खाद्यान्न लूट लिया। जैसा कि अभी स्थिति है, लगभग 40% हैतियन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा दान किए गए भोजन पर निर्भर हैं। गिरोह की हिंसा स्थानिक है, खासकर राजधानी पोर्ट और प्रिंस एवं प्रमुख शहरों में। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।